राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6/10/93 सायं 6 बजे दिल्ली में हुआ।
पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
तीन योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग के विषय में कल बात कही, उसमें कहा भी कर्म का निषेध किया है गीता राम गीता में, कर्म का किया, कर्मयोग का नहीं है। तो ज्ञान योग क्या है? कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लें, ये कर्मयोग है। और ज्ञान करके ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये ज्ञान योग है। ज्ञान में एक विलक्षण बात है। अभी क्या कई तरह के ज्ञान है और विज्ञान है, अज्ञान है, विविध ज्ञान है, कई तरह के हैं। परंतु ज्ञान योग का तात्पर्य है कि ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना। वो ज्ञान क्या है? वो है विवेक ज्ञान। अलग अलग जड़ क्या है, चेतन क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सारे ये जो अनित्य नित्य सत्य असत्य का अच्छी विवेक है, विलक्षण विवेचन करने लेना, विश्लेषण करना, इसका नाम है विवेक। विवेक ज्ञान में जड़ और चेतन का विभाग कर देते हैं, फिर चेतन में स्थित होकर जड़ का त्याग कर देते हैं, तब तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मुक्ति हो जाती है। भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। ज्ञान को बहुत से दुर्लभ कहते हैं, कठिन कहते हैं, परंतु गीता ने तो आरंभ ही ज्ञान से ही किया है। कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये क्या बात है, पहले ही पहल कैसे कहा? तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने ज्ञान का विवेचन करना शुरू किया। आरंभ में अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादास्त भाषते गतासून अगतासून से नान शोचंती पंडिता। जीते उनके लिए, मरने के लिए उनको पंडित शोक नहीं करते। ये पहले ही दो बात कह दी, गतासून अगतासून, दो बात विभाग। 11 से 30वें श्लोक तक ये ज्ञान योग का विवेचन भगवान ने किया है। इसमें क्या चीज है कि सब लोग समझ सके, इस वास्ते इसमें देह और देही का विवेचन है। टीकाकार आत्म अनात्म का विवेचन कहते हैं, परंतु 11 से 30 वर्ष श्लोकों तक कहीं आत्मा अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, माया, अविद्या, ब्रह्म आदि शब्द नहीं आए 30 श्लोकों में। इन्हें कहना है कि आप समझें स्वयं विवेक के द्वारा। एक आप कहते हैं मैं हूं, तो आप है ये सत्ता आप स्वीकार करते हैं, ये सत्ता है वो असत से अलग मान लें, ये विवेक है। तो सत क्या है? आप सब भाई बहनों का अनुभव है कि जो बालकपन में मैं था वही आज हूं। खूब ध्यान दें, इतनी बात है ये, जो बालकपन में था वही आज मैं हूं। इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। ये ज्ञान सबको है। पर बालकपन में शरीर था वैसा शरीर आज नहीं है। किसको ज्ञान नहीं है ये? मैं तो वही हूँ और शरीर बदल गया है, तो नहीं बदलता है वो मेरा स्वरूप है। सीधी बात, सर का स्वरूप। तो भगवान ने प्रकृति पुरुष का नाम नहीं लिया है, यहाँ देह देही, सत असत, शरीर शरीरी, ये शब्द लिए हैं। इनका लेने का तात्पर्य क्या है कि आप मानते हैं, जानते हैं कि शरीर बदला है, मैं नहीं बदला हूँ। शरीर बदला है, मन बदला है, इंद्रियां बदली है, भाव बदले हैं, सिद्धांत बदले हैं, परिस्थिति बदली है, ये सब बदलने के, देश बदला है, काल बदला है, अवसर बदला है, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। ये बदलने वाली चीज मैं नहीं हूँ। इन बदलने को जो जानने वाला है वो मेरा स्वरूप है। अब इसमें बहुत सरलता से कैसे ज्ञान हो कि बदलने वालों के आदि और अंत को हम जानते हैं। शरीर के बदलने के आदि अंत, पहले बालक था, जवान हुआ, जवान हुआ, वृद्ध हुआ, वृद्ध हुआ, अगर बीमार हुआ, मरा, तो ये शरीर का बदलना है। ऐसे परिस्थितियों का बदला है, घटनाओं का बदला है, देश का बदला है, काल का बदलना है, समय का बदलना है। तो बदलने वाला है उसको बदलने वाला नहीं जानता है, जो नहीं बदलने वाला है वो जानता है। खूब जान दें, जैसे एक जगह कोई बैठा है, सामने से आदमी एक गया, दो गया, तीन गया, दस बारह चले गए, तो दस बारह चले गए वे कितने आदमी गए वो आदमी नहीं जानते, क्योंकि वे तो एक एक गए। ज्यादा से ज्यादा जाने तो अपने आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला, जाने वाले तीन, और अपने को तीनों को जान सकता है, जितने गए उनको नहीं जानता। इनको वही जानता है जो जाने वाला नहीं है। खूब ख्याल करना, ये सीधी बात सर। शरीर बदला है, मैं नहीं बदला हूँ। जो नहीं बदलने वाला आपका स्वरूप है। इसमें ज्ञान मार्ग वाले नहीं बदलने वाले पर जोर देते हैं कि इससे ज्ञान होगा। गीता की शैली एक और है, वो बदलने वालों को कहते हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्यों बदलता है। और बदलने वालों को वही जानता है जो नहीं बदलता है। तो नहीं बदलने वाला अपना स्वरूप है, ये विवेक है। विवेक बदलने वाला न बदलने वाला का विभाग, ये बदलने वाला मैं नहीं, न बदलने वाला हूँ। अब आप अपने स्थित हो जाए। पुरुषः प्रकृति सो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों को पुरुष प्रकृति में स्थित कर भोगता है, इससे अलग स्वयं भोगता नहीं है। प्रकृति में स्थित न होने से क्या है, पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुख नाम, सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, भोगता है पुरुष प्रकृतिस्थ, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते। अब सुख दुख में सम कब होगा, कि सम दुख सुख स्वस्थ, स्व में स्थित हो जाए। स्व आप जितने बैठे अपने को स्व मान लेंगे, मैं हूं। तो बदलने वालों के आदि और अंत को आप जानते हैं, परंतु अपने भी आदि अंत को जानते हैं क्या? शरीर के पहले के भाव को अभाव को जानते हैं, मन के भाव अभाव को जानते हैं, बुद्धि के भाव अभाव को जानते हैं, निश्चय के भाव अभाव को जानते हैं, परंतु अपने अभाव को भी कोई जानता है? अपना अभाव होता ही नहीं। किसी को ज्ञान है मेरा अभाव है, शरीर का अभाव कह सकता है, बालपन का अभाव कह सकता है, जवानी का अभाव कह सकता है, निरोगता का अभाव कह सकता है, रोग का अभाव कह सकता है, परिस्थिति का अभाव, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कह सकता है, पर स्वयं के बदलने का स्वयं को ज्ञान है? नहीं है, किसी को नहीं है। क्यों नहीं है, कि स्वयं का अभाव होता ही नहीं। अभाव कैसे देना, स्वयं का अभाव होता नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है। आधा श्लोक में मात्र ज्ञान योग की बात सब पूरी पूरी कह दी, 16 अक्षरों में भगवान ने। नासतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और ना भावो विद्यते सतः सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते। जो सत है उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। खूब ध्यान दें, असत भाव न विद्यते। व्याकरण पढ़े हुए सज्जन है आप तो मान लेंगे, तीन धातुओं का प्रयोग किया इसमें, अस भूई भू सत्तायाम और विद सत्तायाम, सत्ता के पास तीन शब्दों का प्रयोग किया तीन धातुओं का। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो असद वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है। असत क्या है कि शरीर बदलता है, जो बदल रहे बदलने वाली चीज है वो असत है, न बदलने वाली वो सत है, बदलने वाली न बदलने वाली दो ही बात। तो आपको सबको बदलने वाले को ज्ञान है, तो असत भाव न विद्यते, असत का भाव मन सत्ता विद्यमान नहीं है। बदलता है वो कभी विद्यमान रहता ही नहीं। थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं, आप हम सब बहन भाई कोई भी अपनी माँ के जन्म लेते हैं, उस समय में जैसा हमारा शरीर है वैसा शरीर है किसी का भी? तो सबको ये मानना ही पड़ता है कि शरीर बदलता है। तो वो कितने बदलता है, क्या एक वर्ष में बदलता है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक वर्ष में बदलता है, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक महीने में बदलता है। प्रत्येक महीने में बदलने वाला 29 दिन न बदला 30 दिन बदल गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दिन में बदलता है और प्रत्येक दिन में बदलने वाला ऐसा नहीं कि एक घंटा के बाद दूसरी घंटा में बदला है, ऐसा नहीं। प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक घंटा में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक सेकंड में बदल, मिनट में बदलता है, मिनट में बदल रही सेकंड में बदलती है, सेकंड में बदलती है वो वस्तु प्रत्येक क्षण में बदलती है। क्षण किसको कहते हैं, दार्शनिक क्षण है, 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए और उसमें एक सुई मारी जाए ऐसे, तो एक एक पत्ते के भीतर में तीन तीन क्षण लगे हैं। पहले क्षण में स्पर्श हुआ है, दूसरे में भेदन किया है, तीसरे में निस्सरण हुआ है। पत्ते के ऊपर लगा और भेदन हुआ, अगाड़ी निकली, 300 क्षण हुए इतने में। तो ऐसे क्षण परिणामी नो भावारिति चति शक्ति है, प्रत्येक क्षण में बदलता है। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, आपने देखा वो तो बदल गया, प्रत्येक क्षण में बदलता है तो ये बदल गई, बदल गई नहीं, बदलना स्वरूप ही इसका स्वरूप है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, वो बहता ही बहता उसका स्वरूप है, ऐसे संसार का स्वरूप केवल निरंतर बहता ही बहता है, रहता दिखता है अज्ञान से पर बहता है। अगर बहता नहीं तो इतना बदला कैसे, आपके हमारे शरीर कैसे बदले, बदल सकते नहीं अगर रहते तो, और रहते तो बदल नहीं सकते, बदलते तो रहते नहीं है। तो प्रत्येक क्षण में बदलता है, इस वास्तव संसार कहते हैं, इसको जगत कहते हैं, गति जगत सरती संसार हरदम सर्वत हरदम बढ़ता है, बड़ी तेजी से बदलता है, जिस क्रिया को आप अलग अलग देख नहीं सकते, ऐसी बदलता है। तो बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, तो असत भाव न विद्यते, असत का भावना सत्ता विद्यमान है ही नहीं। जो प्रत्येक क्षण बदलता है वो विद्यमान कहाँ है? ठीक, आप देखें हरदम बदलने वाली का सत्ता विद्यमान कहाँ है, विद्यमान तो रहता ही नहीं हो। जैसे बदलने वाला का सत्ता नहीं करता विद्यमान नहीं है, ऐसे न बदलने वाले का अभाव विद्यमान नहीं है। न भाव विद्यते सत्ता, सत वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, विद्यमान का असत का अभाव होता है, सत का अभाव होता ही नहीं। तो वो सत है ही है, संतों ने सीधी बात कही, है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे नाय। है सो सुंदर है सदा, है वो सदा का सदा है ही है, और नहीं सो सुंदर नाय नहीं है वो नहीं ही है, पर नहीं सो परगट देखिए और है सो दिखे नाय, नहीं है वो प्रकट दिखता है और है नहीं दिखता है। कारण क्या है कि दिखने वाला और देखने वाली आंख और आंख को जानने वाला मन, मन को जानने वाली बुद्धि, बुद्धि को जानने वाला मैं, ये मैं तक बदलता है। तो बदलने वाले के द्वारा ही बदलने वाले का ज्ञान होता है। अहं का जो साक्षी है, अहं को जानने वाला है, वो नहीं बदलता है। अहंकार बदलता है, मैं मूर्ख हूँ मैं तो विद्वान हूँ, मैं अजान हूँ मैं जानकार हूँ, ऐसे हूँ मैं तो बदलना होता है, परंतु जानकारी और अजानकारी को जानने वाला बदलता नहीं है। एक आदमी के घाटा लगा, 50,000 का घाटा लग गया और फिर 1,00,000 की पैदा हो गई, तो घाटा और पैदा होना ये दो, नफा और नुकसान ये दो चीज हुई, परंतु नफे को जानना नुकसान को जानना वो दो हुए क्या? खूब ख्याल करें आप, वो जानना एक ही है। हम आंख से सफेद को भी जानते हैं, लाल को भी देखते हैं, क्या सफेद को जानने वाली आंख दूजी है, क्या लाल को जानने वाली आंख दूजी है? आंख एक है। ऐसे जन्मना और मरना, इन दोनों को हम जानते हैं, और जन्मने मरने में बड़ा अंतर है, परंतु मरने जन्म के जानने में क्या फर्क है? रात और दिन में बड़ा अंतर है, पर रात और दिन को जानने वाला उसने बदला है कुछ भी? ये जो तरह तरह के संयोग और वियोग है उनको हम जानते हैं, जानने वाला है वो बदला नहीं है। एक बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले सज्जन है उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है। अपनी अवस्थाएं तीन होती है, ऐसे बालक जवान वृद्धावस्था होती है, रोगी निरोग अवस्था होती है, धनवत्ता निर्वत्ता अवस्था होती है, परंतु जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्था होती है। तो जागृत में अहम रहता है, मैं हूं ये मैं रहता है, स्वप्न में भी मैं रहता है, मैं चीज है ये प्रकृति है, और मैं हूँ ये परमात्मा का तत्व है। मैं और हूँ को जानना है अलग अलग, ये है ज्ञान योग। तो अब मैं हूँ इन दोनों का विभाग आप थोड़ा ध्यान दें तो स्पष्ट मालूम होगा कि जागृत स्वप्न में मैं है, सुषुप्ति में मैं नहीं है, मैं लीन हो जाता है, अभाव नहीं होता है। इंद्रियां है वो मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है, बुद्धि अहम में लीन होती है, और अहम अविद्या में अज्ञान में लीन हो जाता है। तो अब अज्ञान लीन हो गया, पर आप अविद्या से अतीत है, इस वास्ते आप अविद्या में लीन नहीं होते, इस वास्ते जागने पर आप कहते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं और बड़ा सुख से सोया था, ये जागने पर कहता है कुछ भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं तो जिसको पता है वो तो था ना, कुछ भी पता नहीं था, संपूर्ण पता के संपूर्ण ज्ञान के अभाव का अनुभव होता है। स्मृति होती है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य स्मृति होती है, तो जागने पर स्मृति होती है, ऐसे सुख से सोया था मेरे को कुछ भी पता नहीं था। जैसे एक घर में कोई आदमी है तो बाहर से पूछता है घर में अमुक आदमी है, अलग अलग पूछा घर वालों को सबको अमुक अमुक है, तो ये कहता कि नहीं है वे नहीं है, घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है तो कहने वाला भी नहीं है क्या? कहने वाला अगर न हो तो कौन कहता है घर में कोई नहीं है? ऐसे आप जानने वाले न होते तो मेरे को कुछ भी पता नहीं है इसका ज्ञान किसको होता? कुछ भी नहीं है इसका ज्ञान जिसके, वो तो है मौजूद, पर जानने की जो परंपरा है अहंकार तक, ये प्रकृति का कार्य है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्दत्तमेव च इंद्रियाणि दशेषं च पंचतेन्द्रियो चौबीस तत्व भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिश्रेष्ठता अपरायम। ये आठ प्रकार के भेद वाली प्रकृति अपरा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये आठ, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में परा, इनसे एक परा उत्कृष्ट प्रकृति मेरी है, वो जीव है। वो जीव मैं हूँ, वो जीव नित्य है, वो रहता है, वो जाता नहीं है। वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में रहता है। हमारी प्राय तीन अवस्था होती है। एक मूर्छा अवस्था होती है, शुभा रहते से आदमी बेहोश हो जाता है, तो बेहोशी को भी कहता है कि मेरे कुछ होश नहीं था। तो कुछ होश नहीं का ज्ञान तो था ना वहाँ पहले, तो वो बेहोश नहीं होता है। जो चेतन है वो बेहोश नहीं होता है। बेहोश प्रकृति का कार्य शरीर होता है। शरीर में रहने वाली इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, ये सब लीन हो जाते, विचित हो जाते, बेहोश हो जाते, अहम भी नहीं रहता। परंतु मेरे को कुछ पता नहीं है, बेहोशी थी, तो बेहोशी का ज्ञान जिसको है उसको होश है, नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। मेरे को कुछ पता नहीं, बेहोशी थी। तो ये चौथी या तीसरी चौथी अवस्था होती है बेहोशी। और पांचवी अवस्था होती है समाधि। तो समाधि में भी कुछ ज्ञान नहीं रहता किसका, संसार का। परंतु समाधि की विलक्षणता ये है कि मैं स्वयं हूँ, उस आत्म स्वरूप का बोध होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सर्वानेन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुभति ज्ञान दीपिते। उसमें ज्ञान की दीप्ति होती है, उसमें सबका संहार हो जाता, उपसंहार हो जाता है, ज्ञान रहता है दीप्ति। इस वास्ते ज्ञान न रहने से शरीर ऐसा बैठा है तो नींद आवे तो ऐसे झुक जाएगा। नींद आने पर तमोगुण वजनदार होता है, वो सिर को रख नहीं सकता, गिर जाता है। और ऐसे ऐसे होने से विक्षेप आते हैं, ऐसे होते तो जड़ता आ जाती है। पर समाधि में है जैसा सही रहता है, उसमें संकल्प विकल्प नहीं है, जड़ता भी नहीं है, जागृति है। जुभति ज्ञान दीपिते, ज्ञान की दीप्ति रहती है। ज्ञान मानो स्वरूप स्वतः वो जागृत रहता है। तो वो जो जागृत रहता है वो आपका स्वरूप है। उसके सिवाय अहं को लेकर इधर उधर प्रकृति है, ये आपका स्वरूप नहीं है। ये ज्ञान योग है असली। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। बारहवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा ऐसे आपको भक्त उपासना करते हैं और अक्षर व्यक्त की उपासना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन? तो भक्ति की बात बारहवें में कही, तेरहवें अध्याय चलाते ही भगवान ने उस अव्यक्त उपासना का आरंभ किया। तो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब इदंता से है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एतद्यो वेत्ति, जो तीनों शरीरों को जानता है वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में जाना आती थे, क्षेत्र के क्षेत्र को जानता है। वो जो क्षेत्र को जानता है वो मेरा स्वरूप है। ममेवांश मेरा स्वरूप साक्षात क्षेत्र की चापी माम विद्धि, मेरा वो क्षेत्र की एकता है। ये क्षेत्र क्षेत्र गया का ज्ञान है, वो मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतं मम, ये मेरा ज्ञान है। तो ये ज्ञान मार्ग है, बहुत सुगम सरल ठीक तरह से। ये ज्ञान योग इतना विलक्षण है कि आपको अच्छा बुद्धिमान हो तो आपको समझाया जा सकता है, आप समझा सकते हैं। बातों में ज्ञान योग सुगम है, परंतु भोगों में राग है। नाशवान पदार्थों की सत्ता और उनकी महत्ता जब तक अंतःकरण में अंकित है, तब तक इस ज्ञान तक आप पहुंचते हो भी नहीं पहुंचते। आप पहुंचे हुए हैं ज्ञान में, स्वयं अपनी सत्ता को जानते हम हैं, हमारा अभाव नहीं होता, ऐसे जानते हुए भी नाशवान के साथ चिपके रहते हैं। और नाशवान टिकता नहीं एक क्षण भी, ये निरंतर जा रहा है, परंतु आप इसको पकड़े रहते हैं। अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। इस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। जगत है ये इसने मान रखा है, और है नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, है कहाँ। खास ज्ञान योग में बाधा है, असत को सत्ता दे रहे हैं और सत्ता भी महत्ता दे रहे हैं। रुपये आते जाते रहते हैं, ये सबका अनुभव है। शरीर बदलता रहता है, सबका अनुभव है, परंतु इनको महत्ता दे दिया आपने। रुपये बड़े भारी कीमती है, अब छूटना मुश्किल हो गया। आपकी दी हुई महत्ता से आप दब गए। इस वास्ते इसके से अलग आप है। रुपयों के भाव अभाव को जानते हैं, शरीरों के भाव अभाव को जानते हैं, कुटुंब के भाव अभाव को जानते हैं, अपनी संपत्ति के भाव अभाव को जानते हैं, रोग निरोग भाव अभाव को जानते हैं। तो भाव अभाव को दोनों को जानते हैं। आपका अभाव आपको ज्ञान नहीं है, तो आपका भाव निरंतर रहता है। तो सदा अभाव निविद्य, सत का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, अभी है नहीं, पहले अभाव था नहीं, अभी अभाव है नहीं, फिर अभाव होगा नहीं, और अभाव हो सकता नहीं। चारों बात आपके शुरू में पहले की भाव था, अब भी भाव है, अगाड़ी भाव रहेगा, उस अभाव संभव ही नहीं है कभी। अगर अभाव हो जाए तब तो मौज हो जाए, काम करो, इनका फल किसको भोगना पड़े। जैसे शरीर नहीं रहता, ऐसे हम ही नहीं रहेंगे, तो पाप और पुण्य का फल कौन भोगेगा। तो हम मरते नहीं है, अमर जीव मरे सुखाया, शरीर मरता है, हम रह जाते हैं वही। तो इस बार धन भोगना पड़ता है, किसको भोगना पड़ता है, जो शरीर के साथ में एकता रखता है, संचालन करता है उसको। अगर शरीर में रहते हुए ही आप अगर अलग का अनुभव कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, कब होता है, ज्यादा होता है, स्वस्थ होता है, बीमार होता है, मैं तो एक रस रहता हूँ, ऐसे अलग जान लें, तो शरीर के बदलने का, जिनके द्वारा होने वाले पापों का आपके स्पर्श ही नहीं होगा। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि में लेप जिसके नहीं होता है, मानो लगाव नहीं होता है, चेप संलग्नता ऐसा नहीं है। हत्वा भी से मान लो का न हंते न निबद्धते, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है, उसको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि आप अलग अलग अनुभव कर लिया। अब किसको पाप लगता है, तो एक स्थूल दृष्टांत बताऊं। जैसे मोटर चलती है, मोटर चलती है, उस मोटर से कोई आदमी की हत्या हो गई, तो मोटर को पकड़ लेते हैं और ड्राइवर को दंड होता है। मोटर को दंड नहीं होता है, दंड ड्राइवर को होता है। अब कहोगे ड्राइवर को होता है तो कोई दूसरे ड्राइवर को हो जाएगा, ड्राइवर को दंड होता है, किसी ड्राइवर को पकड़ा दिया जाए, कहते ही उस गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को ही दंड होता है। एक चला रहा था तो जो पास में बैठा है ड्राइवर है उसको दंड होगा, तो किसको होगा, जो चला रहा है। ऐसे मेरा शरीर है, मैं चलाता हूँ, मैं सुख दुख भोगता हूँ, ऐसे मैं कहने वाला जो स्वयं है, ये संचालक है, ड्राइवर है, इसको दंड होता है, इसको पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। शरीर तो मर जाता है, ये मरता है नहीं, सत का अभाव नहीं होता, और असत शरीर है, इसका भाव नहीं रहता, ये तो रहता नहीं, और स्वयं मरता नहीं, मरता नहीं। इस वास्ते अगर जन्म मरण में जाता है, भोग देता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी कुछ होता है, कभी रोता है, कभी हर्ष होता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी बहन दुखी हो जाता है, ये थप्पड़ है दोनों ही। प्रसन्नता होना भी विकार है और नाराज होना भी विकार है, ये विकारों से आप अलग है। इन दोनों विकारों को आप जानते हैं, कोई भाई बहन आप में मेरे हमारे में सब में ऐसा कोई नहीं है जो सुख और दुख को अलग अलग न जानता हो। सुख और दुख तो अलग है, परंतु जानने वाले में अलग क्या है, जो सुख को जानता है वही दुख को जानता है, जो दुख को जानता है वही सुख को जानता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं और आप जानते जानने वाले आते जाते नहीं रहते हो, आप रहते हो, आप रहने वाले हो, बदलने वाले नहीं हो। वो रहने वाले में अपनी स्थिति कर लेना, ये ज्ञान योग है। ज्ञान मानो ऐसा विवेचन करना, ज्ञान हुआ और नित्य निरंतर रहने में स्थित हो गया तब योग हो गया। अपनी स्थिति के साथ आपकी स्थिति हो गई तो योग हो गया, और नित्य विवेचन किया ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो विवेचन आपने सुन लिया, मैंने कर दिया, पर ज्ञान योग तब होगा जब नित्य तत्व में आपकी स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति आपकी है, जो नित्य निरंतर स्थिति है उसी की प्राप्ति होगी, और जो नित्य निरंतर जा रहा है उसका ही त्याग होगा। जिसका त्याग हो रहा है उसका ही त्याग करना है, और जो कभी त्याग नहीं कर सके नित्य रह रहा है उसी के में स्थित रहना है। इतनी बात, ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। दोनों का जो विवेक ठीक ठीक है, असत का सत का, नित्यकार अनित्य का, सारकार असार का, अविनाशीकार विनाशी का, अलग अलग विवेक हुआ। तो ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है। इस विवेक में को जितना ऊंचा जागृत करोगे उतना साफ साफ दिखने लग जाएगा। अब विषयाशक्ति मानस में यह संशय ब्रह्मा सत्वारे प्रतिबंधा सु ज्ञानाधार से हेतु। ज्ञान आपने समझ लिया परंतु इस पर हरदम कायम नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? उत्पन्न विनाश होने वाले संयोग जन्य वाले जो सुख है, संयोग जन्य दो चीजों के मिलने से जो सुख होता है, उस सुख का आपके हृदय में महत्व है। रुपये आ गए, भोजन बढ़िया हो गया, आदर मिल गया, हमारी प्रशंसा हो गई, ये सुख। और निरादर हो गया, हमारी निंदा हो गई, अपमान हो गया, ये दुख। इनको आपने महत्व दे रखा है, ये आपको स्वरूप में स्थित होने नहीं देते हैं। और शास्त्र क्या कहता है इसमें संदेह है, और उल्टा निश्चय है। संसार तो सच्चा है, परमात्मा है कि नहीं है ये पता ही नहीं, संसार ही सच्चा है, ये उल्टा निश्चय। और है क्या इसका संदेह, ये विषयाशक्ति और प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और उल्टा निश्चय। विषयाशक्ति मानस्त मेयस्त संशय और भ्रमा उल्टा निश्चय, ये चार है, ज्ञान दृढ़ नहीं होने देती। सबसे मुख्य है विषयाशक्ति, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एव थे। जो संबंध जन्य जितने सुख हैं वो सुख दुख पैदा करने वाले ही हैं। आप संबंध जन्य सुख को तो भोगें और दुख को न भोगें किसी के हाथ की बात नहीं है। दुख भोगने में परवश होना ही पड़ेगा। हम अभी जोधपुर जेल खाने में गए थे तो जेलियों को मैंने सुनाया कि आप समझते हो कि हम जेली हैं, पर जब तक बोध नहीं हो तो सब जेली हैं। पाप करते हैं अपनी मर्जी से, दंड भोगते बिना मर्जी के, जेल में और कौन है बताओ। करते हैं अपनी मर्जी से और भोगते हैं दूसरे की मर्जी से। ऐसे जो मर्जी से पाप करते हैं और भोगना पड़ता है ये तो जेली है, और क्या जेली है। सब बंदी है, सब बंदी है, सभी सब बंदी गृह में है। तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, निहाल हो जाओगे। तो आपको भोगना पड़ता है। तो ड्राइवर चलाता है, उस ड्राइवर को दंड होता है। लाठी से कोई मार देता है तो लाठी को दंड नहीं होता, चलाने वाले को होता है। ऐसे मोटर चलाने वाले को होता है। तो शरीर को संचालन कर रहा है, मैं चलाता हूँ, मैं हूँ, ये फंसता है, ये मन जाता है। अरे ये अहंकृत भाव नहीं है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इसको भगवान पांच तरह का है। ए तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, एक इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, एक प्रकृत्येव कर्माणि, प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है, और स्वभावस्तु प्रवृत्ति के स्वभाव जो अब स्वभाव उभर रहा है और प्रकृति कर्मन प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, गुणों के अनेक कर्ता कोई नहीं है, ऐसे इस विषय को बताया है। पांच हेतु बताया, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से पंचमम, ये पांच है क्रिया को करने वाले, आप स्वयं क्रिया करने वाले नहीं है, परंतु आप इनके साथ मिल जाते हैं तो दंड भोगना आपको पड़ता है। ये तो बदल जाते हैं, आप वही रहते हो, अब बदल जाए उनको क्या पाप लगे, जो बदल गए वो तो बदल गए चले गए, पर सब बदलने को जानने वाला वो पकड़ा जाएगा, वो आप स्वयं है। और वो कब है कि उनमें प्रकृति में स्थित है, इस वास्ते दुखी दुखी होना पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आपके सामने आवेगी। मात्र प्राणियों के सामने प्रतिकूलता अनुकूलता आती है, वृक्षों के सामने जाड़ा आता है उससे जल जाते हैं, बहुत गर्मी आती है पानी नहीं मिल रहा जल जाते हैं, तो ज्यादा ठंडक आती तो जल जाए, गर्मी तो ही तो ठंडक थे अनुकूलता ठंडक मिलती है अपने अच्छे लगती है, और जो प्रतिकूलता आती वो गर्मी है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता दो यही आपके विघ्न है बाधा है। तो यस्य परिपंथिनौ इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष ये व्यवस्थित है, अनुकूलता में राग होता है प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष होता है। तयोर न वशमागत छेद, इन दोनों में से किसी के वशीभूत न होवे, आता जाता रहे, ये तो आने जाने वाले हैं। थोड़ा सा विचार करते करो तो आप तो है रहने वाले, ये है आने जाने वाले, उससे आप दुखी क्यों होते हैं? आप घर में रहते हैं, कुत्ता आने और जाने वाला होता है, कौवा आने और जाने वाला होता है, वो रहने वाला तो नहीं होता। ऐसे सुख दुख है ये आने जाने वाले नहीं होते, ये तो रहने वाले होते हैं, तो इनके आने जाने का क्यों विचार करो आप? ये तो आगमा पागमा नित्या ठहरेंगे नहीं, ना तो सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा। अरे जो स्वयं का होगा वो अनुभव होगा, वो आनंद होगा, एक सुख है दुख है एक आनंद है, आनंद में फिर दुख नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो है, क्या सूरज में दो है? सूरज में रात और दिन दो है क्या? तो है ही नहीं। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा तानई मोह निशा लवलेशा लोलेश मात्री रात्रि नहीं है, दिन दिन है, परंतु रात्रि के बिना दिन संज्ञा नहीं होती, संज्ञा रात और दिन दो होने से होती है, रात की अपेक्षा दिन, दिन की अपेक्षा रात, ऐसे जड़ की अपेक्षा चेतन, चेतन की अपेक्षा जड़, नित्य की अपेक्षा अनित्य, अनित्य की अपेक्षा नित्य, सत की अपेक्षा असत, असत की अपेक्षा सत, ऐसे ये दो होने से दो भाग है, ये तो ये दो भाग में एक भाग ठीक है एक बेठीक है, तब रात्र दिन नाम दो होते हैं। अब सूरज में रात होती ही नहीं तो उसका नाम दिन नहीं है, परंतु हमारी दृष्टि से देखें तो दिन ही दिन है, रात है ही नहीं, रात तो है ही नहीं, तो दिन ही दिन है, पर दिन नाम नहीं है वहां, नाम तो रात होने से दिन नाम होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या तो दिनेश है, दिन का मालिक है। तो ऐसे उस परमात्म तत्व में आपके स्वरूप में रात दो नहीं है, सुख दुख दो नहीं है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही प्रकृति में स्थित है, पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां अंतःकरण ये तो क्रियाएं करते हैं, तो करने में तो हेतु है प्रकृति प्रधान और भोगने में प्रतु है पुरुष प्रधान। जैसे मनुष्य के मरने में प्रधान मोटर है, परंतु दंड भोगने में प्रधान ड्राइवर है, वहां मोटर को मारपीट नहीं करते कोई, ऐसे आप स्वयं इनको चलाते हो और इनके साथ एक मिल जाते हो, इस वास्ते पाप और पुण्य के भागी होते हो, नहीं तो सम दुख सुखा स्वस्थ अपने स्व में स्थित हो जाए, तो स्व में राग है न द्वेष है, हर्ष है न शोक है, न दुख है न सुख है, आनंद है, आनंद स्वरूप है, निर्विषय आनंद, जिसके आनंद का कोई आदि अंत नहीं, ऐसा आनंद है। तो ये सब गुणों में गुणा गुणेश वर्तन्ते, कारण गुण संगोच्य सद असत योनि जनुषु, ऊंच नीच योनियों में कारण है गुणों का संग, सतोगुण के साथ संग करते हो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, रजोगुण के साथ संबंध करते हो तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और तमोगुण के साथ संबंध करते हो तो अधोगत संधि तामसा। तो ऊर्ध मध्य और अधगति होती है इन गुणों के संग से, और गुणों से असंग हो जाए न ऊर्ध गति न मध्य गति न उत्तम गति अधोगति, आपने गति है ही नहीं। वह गति होती है उसकी जो दूसरे देश में नहीं होता, जैसे मैं यहाँ हूँ यहाँ नहीं हूँ तो वहाँ जाना पड़ेगा। जब वो नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन, नित्य है सर्वगत है स्थिर स्वभाव है अचल है नित्य निरंतर रहने वाला है, गति कैसे हो उसकी कैसे जावे। भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस हेतु सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा ये बनता बिगड़ता है सदा। भूमा सबसे बड़ा अचल शाश्वत निरंतर रहने वाला अमल मल रहित कोई दोष नहीं है। सम ठोस है जो ठोस है, जिसमें कांच घन होता है, जैसे पत्थर में पत्थर घन होता है, जैसे लोहे का पिंड वो घन है उसमें सुई प्रवेश नहीं होती, ऐसे आनंद घन है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, तुम्हारा निवास आनंद सिंधु में है। बिर जाने कतम निरसी पियासा, उसको जाने बिना क्यों प्यासे मर रहा है, तो उसको जाने दें तो प्यास में स्थिति हो जाए। जैसे सपने में कोई सिर काटता है तो जागने पर कटे कटा हुआ मिलेगा सिर, वो तो सपना था। इसी तरह से अज्ञान रूपी स्वप्न में ये सब काटना वटना होता है, जहाँ जागे अपने स्वरूप में ना कोई सुख है ना दुख है, न कटना है न भरना है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, इन दोनों से ऊंचा उठ गया। कौन ऊंचा उठ गया कि यह तेरे जैसा स्वर्ग, कल बताया था ये स्वर्ग संसार को जीता किसने, ये सांग साम्य स्थित माना। तो कर्मयोग साम्य में स्थिति, साम्य परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोष है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जब साम्य में स्थिति तस्मात ब्रह्म जैसा ब्रह्म स्थिति है, और राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बैठी है, यह है प्रकृति में स्थिति। तो प्रकृति में स्थिति आपकी रहती नहीं है, प्रकृति एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, आप एक क्षण भी बदलते नहीं तो दोनों का साथ कैसे होगा, दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। तो इस विवेक के द्वारा निरंतर रहना रहते हो आप, उसमें अपने स्थित हो जाओ, और जो नित्य निरंतर बदलता है उनसे आप अलग हो जाओ। जो अलग हो और नित्य उसमें स्थिति है आपकी है, उसे कोई प्राप्त करना है नई बात नहीं है। तो ज्ञान योग बहुत सुगम है, बड़ा सरल है। कठिन क्यों हो रहा है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को आपने महत्व दिया है। रुपया आने जाने वाला है नित्य रहने वाला है क्या, सुख दुख आने जाने वाले है क्या नित्य रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता बदलने वाली है क्या नित्य रहती है, लाभ हानि क्या कोई नित्य रहते, लाभ हानि कोई नित्य रहते हैं। तो ये बदलने वाले से आप एक क्यों हो जाते हैं, उसको महत्व क्यों दे देते हैं। अब सुख को महत्व दोगे तो दुख का महत्व आ जाएगा, आप लाभ संयोग में सुखी होंगे, वियोग में आपको दुख होगा। इसमें एक सार बात बताऊं आपको, इस ज्ञान योग के लिए बड़ी लाभदायक बात है। आप हम कल मिले और बिछुड़ गए, फिर आज मिल गए फिर बिछुड़ गए, फिर कल आते हुए मिल गए फिर बिछुड़ गए। तो मिलना और बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना है, खूब ध्यान दें, बड़ी अनुभव की बात है। आप हम आपको मैं नहीं जानता था, मेरे को आप नहीं जानते थे, तो पहले मिले नहीं थे तो आपका हमारा वियोग था। और एक दिन ऐसा होगा कि उस मिलने के बाद में चाहे आपका शरीर नहीं रहे चाहे मेरा शरीर नहीं रहे, फिर मिलना नहीं होगा। तो संयोग और वियोग में वियोग है नित्य, ध्यान दें आप लोग, वियोग नित्य रहेगा। पहले वियोग था अंत में वियोग रहेगा, संयोग है अनित्य। आप चाहते हैं संयोग, ये भूल होती है, ये बाधा होती है। संयोग और वियोग में आप समझ गए होंगे, वियोग नित्य है, आपका हमारा वियोग पहले से था और अंत में भी वियोग में ही जाओगे। संयोग कभी रहेगा नहीं, रहने का नहीं, रह सकता नहीं, रहना संभव नहीं है। और वियोग स्वतः सिद्ध है तो संसार से वियोग होना है, अपने जानकर वियोग कर लेना है, ज्ञान हो गया। ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीता हुआ भी मुक्त हो गया, बंधन से रहित हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव है कि वियोग नित्य है, तो नित्य में आप स्थित हो जाए। मानो संयोग की इच्छा न रखे, क्यों न रखे कि ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो ने एव थे आद्यंत वंत कौनते न ते सुरमते बुधा। ये ही संस्पर्श जाप होगा, जो संबंध जन्य भोग है, जैसे भूख लगी भोजन से सुख होता है, प्यास लगी तो जल पीने से सुख होता है, जाड़ा लगा तो कपड़ा ओढ़ने से सुख होता है, तो ये संयोग जन्य सुख है। तो संयोग जन्य सुख है वे दुखों के कारण है। संयोग जन्य सुख भोगता रहे और दुख न भोगे कभी होगा ही नहीं। जैसे कैदी वही होते हैं जो स्वतंत्रता से सुख भोगते हैं, प्रतंत्र से दुख भोगते हैं, ऐसे मात्र जीवों की यह दशा है। स्वतंत्रता से सुख भोगते हैं, परिणाम दुख प्रतंत्रता भोगना ही पड़ता है, छूट नहीं सकता। सुख के भोगी को दुख मिले बिना रह ही नहीं सकता। अगर दुख भोगना नहीं चाहते हैं तो आप सुख का आसक्ति छोड़ दो, सुख भोगना छोड़ दो। आप दोनों से रहित है, सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, आप रहने वाले आने जाने वाले क्यों फंस गए? आप अपने जाने हुए असत का त्याग करें, केवल इतनी बात है। आपके जाने हुए असत का आप त्याग कर रहे हैं, मुक्त हो जाएंगे, ये ज्ञान योग हो गया। शरीर जाने आने वाला, कुटुंब आने जाने वाला, रुपया आने जाने वाले, मकान आने जाने वाले, मान बढ़ाई आने जाने वाली, ये सब आने जाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, आ जा दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विक्त स्प्रिय। दुख में कोई उद्विग्न नहीं हुआ, सुख में कोई स्प्रिया नहीं, अच्छी बात है। सुख आओ दुख आ जाए, उपाय कर लो भाई, ज्यादा लगता है कपड़ा ओढ़ लो। अब सुखी दुख क्यों होते हो? भूख लगी दुख है, भोग में भोजन मिल गया सुख मिल गया, भोजन नहीं मिले तो नहीं मिले तो मर जाएंगे। ये प्रश्न आएगा खास कि हम सुख में रहा भोजन नहीं मर जाएंगे। अच्छा भोजन करते करते ही मरोगे है किसी के पास में? भोजन करते नहीं मरेंगे तो भोजन करते हुए भी मरना है, भोजन न करने भी मरता है, तो भोजन बिना किए मर जाने में हानि क्या हुई? नई बात क्या हुई? तुम भोजन तो मैंने किए भी मर जाओगे, भोजन करते करते ही मर जाओगे। भोजन करना कुछ सदा मिल जाए ये बात नहीं है, और भोजन करते जी जाए ये बात भी नहीं है। तो उनसे जीना मरना होता ही नहीं, तो उसमें घबराहट क्या है? विचार करो भाई, मिलना तो मिलेगा, अरे मिलने वाला मिलेगा ही, कुछ भी मत करो मिलेगा वो। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे शरीर रचा गया। हम लोग सत्संग के लिए आए हैं तो आने का स्थान पहले बना हुआ है, ऐसे नहीं हम आके खड़े हो जाएं फिर हमारे लिए स्थान बनाया जाए, ऐसा होता है। तो आपका जन्म जहाँ होता है पहले प्रबंध सब है, खाने पीने का रहने का सब परमात्मा के प्रबंध है। वो प्रबंध है इस वास्ते जीत जब तक जियोगे तब तक आपके पास रहेगा प्रबंध। कुछ भी नहीं करते कुछ भी लेते उनको भी रोटी मिलती है, रुपये वालों को मिलती है, बिना रुपये वालों को मिलती है, और रुपये लाखों करोड़ रुपये पास में पानी नहीं मिलता मिलने पर। अभी जब विभाग हुआ तो पाकिस्तान से आने वालों को 10-10 रुपया देने पर गिलास नहीं मिली पानी की। भूखा मरे प्यासे मरे, रुपया बहुत है कि रुपया से प्यास मिट जाती है? क्या रुपये से भूख मिट जाती है? जिस रुपये से आपके कुछ काम नहीं चलता है, रुपया खर्च करने से काम चलता है, खर्च करने से रुपया काम आता है और आपकी धुंध रहती है इकट्ठा करने की, ये बुद्धिमानी है क्या? रुपया खर्च करने से ही आपके काम आएगा, खर्च करने से दूसरों के काम आएगा, पड़ा हुआ आपके काम नहीं आएगा और काम नहीं आएगा। सोना चांदी बहुत पड़ा है आपके पास में, खर्च नहीं करो तो क्या जी सकोगे? रुपयों का बड़ा भारी लोभ है, तो सोना चांदी रुपए पैसे इकट्ठे कर चबूतरा बना दिया जाए, उसके ऊपर आपको बैठा दिया जाए, अन्न जल वस्त्र न दिया जाए, कितने दिन जियोगे? और अंदर जल से दे दो, एक तांबे का पैसा भी गिल्टी का पैसा भी दिखाएंगे ही नहीं तुम्हारे को, चाहे उम्र भर आप मत दिखाओ, नोट ना दिखाओ, रुपया ना दिखाओ, चांदी ना दिखाओ, हीरा पर ना कुछ ना दिखाओ, तो क्या मर जाएंगे हम? तो असली चीज तो अन्न जल वस्त्र मकान है, पर आपने महत्व दिया है रुपये को। प्रत्यक्ष रुपया न खाने में काम आता, न ओढ़ने में काम आता, न सवारी में काम आता, न दवाई में काम आता। स्वयं रुपया क्या काम आता है? रुपया खर्च करना काम आता है। वो खर्च तो करते नहीं, इकट्ठा कर रहे हैं, संबंध इकट्ठा, खर्च हो जाए तो चोट लगती है, खर्च हो गया, लाख रुपया आपके पास पैदा हो गया। अब नए कमाओ खाओ, लाख रुपया जमा है, उसमें से 5-10 हजार भी लड़का खर्च कर दे तो चिढ़ जाते हैं, अरे छोरा तुम समझते नहीं हो। और संग्रह क्या काम आया? चोर अगर है, डाकू आदि है, वे सब आपसे ठगेंगे। अरे आजकल तो महाराज, पहले चोर डाकू डरो तो राज को जाते, आज राज आ जाती है, बदल लिया आपको खबर करेगी, वो राज ले जाएगा, अब कहाँ जाओ, किस बिल में जाओगे बताओ? अरे कहा तो आप मरोगे, कहा रुपये चले जाएंगे, कहा दोनों मर जाओगे, ठहरने वाला है नहीं। तीन बात में कोई बात तो होगी ही, रुपयों का संत वियोग होने वाला है ही, जिसके साथ वियोग होने वाला है उसको पकड़े हुए रहते हैं, हम रुपयों वाले हैं, कोरी फूंक भर गई, हम लखपति हैं, हम करोड़पति हैं। हम कहते हैं आपके पास करोड़ रुपया है, मैं भी कह सकता हूँ हमारे करोड़ रुपया क्यों है, हमारी ये मुनि है, ये रखते हैं, इनके पास है रुपया हमारे है, क्यों रोटी मेरे को दोगे, कपड़ा मेरे को दोगे, या रुपया आप भी नहीं खाओगे ना ओटोगे, यार वो भारत को मिल ही जाएगा। फर्क क्या है? आपके चोर डाकू से डर लगता है, राज से भी, हमें डर लगता नहीं किसी से भी, क्या डर है हमारे? प्रत्यक्ष बात है, तो वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, उस नित्य को आप पकड़ लो तो नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो अनित्य में है हुए, ये ज्ञान योग है। अब समय हो गया, अब इस ज्ञान योग में कोई शंका हो कृपा करना, गहरे उतर करके पूछना, उठपटांग बात मत पूछना, इन दोनों को ठीक तरह समझ करके प्रश्न करो, कोई शंका हो।
आत्मा न तो करता है न भोगता है,
हाँ।
फिर वो पाप पुण्य को कैसे भोगता है?
ये बात सुनी हुई है, समझी हुई है? आत्मा करता भोगता नहीं है, सुनी हुई याद करी है, अनुभव की बात है,
सुनी हुई है,
सुनी हुई झूठी होती है, अनुभव बात बताओ।
मेरा ज्ञान रहा ना कि मैंने अनुभव किया आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं फिर हमारा दूसरे शरीर में जाते हैं, हमारा ज्ञान विस्मृत होता है।
ज्ञान विस्मृत होता है, पर बुद्धि मन साथ में रहते हैं, जैसे लकवा मार जाता है तो उसकी स्मृति रहती है, तो ऐसे मरने में स्मृति नहीं रहती, कि आप नहीं रहते हो, ज्ञान नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, स्मृति धक्का लगता है, बुद्धि भूल जाती है।
समष्टि चित्त का रूप क्या है?
समष्टि चित्त, चित्त सब मिलकर के आपका, हमारा, पशु पक्षी वृक्ष आदि का, सबका चित्त मिलकर के एक चित्त हो जाना, और एक चित्त हो करके जहाँ चित्त का भेद है वहाँ भी रहने वाला चित्त है, वो समष्टि चित्त है। जैसे अनेक वृक्ष है, हजारों लाखों, सब वृक्ष मिलकर के एक वन होता है, तो वन वृक्षों वृक्षों का ही नाम नहीं है, वृक्षों के नीचे छोटे बड़े पौधे होते हैं, वो खाली सबका नाम वन होता है, ऐसे सबों के चित्त और चित्तों के बीच में रहने वाली खाली जगह, वो सबका मिल मिलकर समष्टि चित्त होता है परमात्मा का, हमारा व्यष्टि चित्त वृक्षों की तरह। निर्लुप्त बात कह देना, अनुभव है कि सुनी हुई बात है? सुनी हुई बात कोई काम नहीं आती। देखो, एक आदमी की गाय बीमार हो गई, तो चिकित्सक के पास गए, भाई तुम पशुओं की चिकित्सा करते हो, हमारी गाय बीमार हो गई, बहुत दूध देने वाली गाय, अच्छी गाय है। उसने कहा पाव भर काली मिर्च लाओ और दो बार में दे दो, और पाव पाव गऊ का घी उन्हें दे देना। ले गया, जाकर गाय को काली मिर्च दे दी, दूसरे दिन दे दी और गाय को दुही ही नहीं। चल गया सा, गाय तो हमारी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। कहा भाई गाय कैसे बीमार हो गई? हमने कहा जैसे कि हाँ साहब क्या किया कि काली मिर्च दे दी, कहीं घी, तो घी का तो गाय में है ही, तो गाय में रहने वाला घी काम आएगा, निकाल के देने काम आएगा। ऐसे आत्मा ऐसा है और सुन लिया, कह दिया गाय में घी है, वो काम नहीं आएगा। घी अलग है जो काम आएगा। हिरण्यगर्भ में तो अभेद है, परंतु संपूर्ण भेदों को लेकर अभेद है। जैसे जंगल होता है ना वन, इस तरह से हिरण्यगर्भ को हो चाहे समष्टि महत्व को, बुद्धि समष्टि बुद्धि को हो चाहे महत्त्व को, ये बात सुनी हुई है। अनुभव लाओ तो निहाल हो जाओगे। अनुभव है जो प्रश्न जरूरत नहीं, अनुभव है तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न वो अनुभव नहीं है। अनुभव में प्रश्न उठता ही नहीं।
बताए ना आपको अनुभव है जब ठीक है,
अनुभव में प्रश्न नहीं हो सकता है, प्रश्न होता है अनुभव नहीं है, सीधी बात है। अनुभव अनुभव संभव क्या है? अरे भूख है तो अन्न नहीं मिला है, अन्न मिला है तो भूख नहीं है, दोनों बात साथ कैसे होगी? अनुभव होने में शंका नहीं होती, शंका होने पर अनुभव नहीं है, सिद्ध होता है। सोहम और
सीताराम,
हाँ एक ही है। सोहम करके ये योगियों का सोहम है, ज्ञानियों का ओम है, और सीताराम भक्तों का है तत्व एक ही। तादात्म कर लिया है, तादात्म है नहीं, मान लिया है।
क्यों कर लिया?
क्यों कर लिया? भोगों के लिए, सुख भोगने के लिए। आप एक दुकानदार के साथ संबंध क्यों कर लेते हो? सौदा लेने के लिए, रुपया देने के लिए, ऐसे सुख सुख भोगने के लिए संबंध कर लेते हो, सुख भोगते हो, परवर सुख भोगते मर्जी से, दुख भोगना पड़ा बिना मर्जी के। रुपया तो कपड़ा तो आप ले लेते हो, रुपया खर्च आपका होता है, ऐसे है संबंध। त्याग जड़ता का त्याग कर दो, जाने हुए असत का त्याग कर दो, मुक्ति हो जाएगी। जिसको आप असत जानते हो, परिवर्तनशील जानते हो, उनका त्याग कर दो, हृदय से मुक्ति हो जाएगी।
आत्मा को ज्योति स्वरूप क्यों बोलते हैं?
है ऐसे शब्द बोलते हैं? गाय में घी है इस वर्ष बोलते हैं? सच्ची बात है।